તારીખ 17-8-1998 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 47
દૂરદર્શી પ્રકાશ કે 70, 74 અને 160 કે ભાવભાષણ કરાએ અબ યે તો એક એક એસે હોતે હૈ કે ઘંટા ભર નિકલ જાય પ્રશ્ન ઇસ તરહ સે ભી હૈ કે આપકી સમસ્યા જો હૈ કોઈ એસે પ્રશ્ન હોય જાય ઇસ ગાથા પર સમજાઈએ તો ફિર લેક્ચર હો જાયેગા પ્રશ્ન ચર્ચા નહીં રહેગી
સંક્ષેપ મેં કર
દીજીએ જી શરૂઆત વાલે કો અનુભવ કે લીએ કૈસે પ્રયત્ન કરના
જી
તો આપકા પુરાણા પ્રશ્ન હૈ આપકા પુરાણા પ્રશ્ન હૈ યે મેં પરિણામ માત્ર નહીં હું ત્રિકાલી ધ્રુવ પણે મેં અપના મન સ્થાપ દેના સ્થાપિત કરના યહી ઉપાય હૈ અનાદિ પર્યાય બુદ્ધિ સહિત મુમુક્ષુજી ઉપદેશ બોધ કો અનુસાર અપની ભૂમિકા યોગી પરિણામ સે પ્રારંભ કરતા હૈ પરંતુ સર્વપ્રથમ પર્યાય મેં અસ્તિત્વ ઉઠા કરકે દ્રવ સ્વભાવ મેં અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરના હૈ એસા લક્ષ્ય પ્રારંભ સે હી રહેના આવશ્યક હૈ એ લક્ષ્ય રહેને કી બાત હુઈ વર્ણા પર્યાય બુદ્ધિ દૃઢ હો જાને સે દ્રવ દ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન હોને મુશ્કેલ હો જાતી હૈ તો ક્યા હૈ કે ઉપદેશ તો પર્યાય આશ્રિત હોતા હૈ હમારે લક્ષ્ય મેં યે બાત હોની ચાહીએ કે પર્યાય આશ્રિત ઉપદેશ કો સુનતે હુએ ગ્રહણ કરતે હુએ કહીં હમારી પર્યાય બુદ્ધિ દૃઢ નહીં હો જાય યે વાત કી સાવધાની હમે રખની હૈ और प्रारंभ तो भूमिका अनुसार ही होता है और मुमुक्षुता में ही मनुष्य आयु पूर्ण हो जाती है और वह भ्रमण छेद नहीं होता। तो हमने सुगानी जी के जीवन चरित्र से भी देखे थे कि उन्होंने प्रारंभ कैसे किया था, उनका प्रारंभ कैसे हुआ था। अगर हम यही भूमिका से नहीं गुजरेंगे तो उनका कहना हमको लागू नहीं पड़ेगा। लक्ष्य रखना एक बात है, प्रारंभ होना दूसरी बात है। शास्त्र में परिणाम देखने की बात आती है तो अज्ञानी जी परिणाम देखते रहते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम जो लक्ष्य रखना है अपने को आखिर में तो हमको द्रव्य का आश्रय करना है, ध्रुव वस्तु रह जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। परिणाम देखने में परिणाम द्रव्यपने से देखना है, परिणाम परिणाम बने से नहीं देखना है। वो लक्षण लक्षण की चर्चा में बात आई थी। तो परिणाम में द्रव्यपने से कब देखेंगे कि ज्ञान में ज्ञान स्वभाव दिखेगा तब। परिणाम को ही देखते रहने से परिणाम के साथ एकता होती है, मात्र पर्याय को देखते रहने से यानी पर्याय को पर्याय मात्र में हम ऐसा देखते रहने से पर्याय बुद्धि दृढ़ होती है, परिणामी में अपरिणामी में एकता नहीं रहती, अनित्य में नित्य चला जाता है। पर्याय की शुद्धि ऐसी पर्याय की बात में रस पड़ जाने से नित्य का जोर नहीं रहता। क्या है कि वजन अगर चल जाता है बैलेंस नहीं रहता तो जो हमको ध्रुव पर जाना है उसमें और अड़चन खड़ी हो जाएगी। पर्याय में जोर करने की तो आदत पड़ी ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम हमारे आदत को मजबूत करें ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर भी ऐसी बातों से हमें हमारा कोई पक्ष हो गया हो अनजाने में अज्ञानता में, तो उसको दृढ़ नहीं करना है। ये सावधानी भी साथ ही साथ रखनी चाहिए। 160 कहीं हम शास्त्र के कुछ एक बोल हमारे अभिप्राय को दृढ़ करने के लिए आगे रखें, ये प्रवृत्ति हमारे लिए घातक बनेगी। कैसे बनेगी? घातक बनेगी। तो इसका ख्याल रखते हुए हमें जो भी ज्ञानियों के जितने भी वचनामृत हैं हमारी भूमिका को देख करके उसका कोऑर्डिनेशन हमें करना पड़ेगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे और हमारा भी अभिप्राय पुष्ट करते रहेंगे तो शास्त्र में सबों के अभिप्राय की बात आती है, और जीव ऐसे ही भूल करता है कि जिसको जो अभिप्राय बना है उसको ही पुष्ट करने की चेष्टा करता है, उनको अपना अभिप्राय की सपोर्ट वाली बातें मिलती रहती है और वो नुकसान में आगे चला जाता है।
शास्त्र में कहीं कुछ ऐसा आता है क्या?
हाँ, ऐसा आता है, बहुत सी बातें आती है।
शास्त्र ही मानने से ही
शास्त्र में विधि की भी बात आती है और द्रव्य सामान्य की भी बात आती है।
कहीं शास्त्र में अटका हो उसी बात का, उसका समाधान तो लेना चाहिए।
समाधान तो लेना चाहिए, चारों ओर से कोऑर्डिनेशन करके समाधान लेना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अगर हम नहीं करते हैं और हमारा अभिप्राय पुष्ट करते हैं तो ये बात तो घातक बनने वाली है ही, इसकी बहुत सावधानी रखनी जरूरी है। हम इन दिनों में देख रहे हैं कि हमें कुछ बातें आगे रखी जाती है, इसमें अभिप्राय पुष्ट करने की चेष्टा हो रही है, ये घातक प्रवृत्ति है, ये साफ साफ हम बता रहे हैं। तो ऐसा आप ऐसा नहीं हो गए उसका ख्याल रखना।
आप छोड़ दीजिए।
चलो, मुरली चेतावनी महेश्वरी ने अपने पद में भी दे रखी थी कि ऐसा ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हम समझने आए हैं या समझाने आए हैं,
समझे
ये बात ख्याल में रखना है।
समझ में आगम की साक्षी चाहिए
और आगम के साक्षी और अनुभव के साक्षी दोनों
चाहिए। आगम से कोई बात नहीं है तो
हम ये देख रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन के विषय में कुछ भी निरुत्तर रहते हैं। हमारा प्रश्न है कि आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन कैसे किया है इन बातों का, ये बताइए। कोऑर्डिनेशन मैंने ज्ञानी जिस मार्ग पर चले यहाँ से प्रारंभ कैसे किया, आपने ज्ञानी के मार्ग के अनुसार कैसे प्रारंभ किया बताइए। जैसे हमने कल बताया था कि सुगानी जी इतने रोए थे, बैंसरी इतने रोए थे, श्रीमद जी इतने रोए थे, आप वहाँ से चले हैं क्या? देखो, वो अपने अभिप्राय पुष्ट करने की बात को मत पकड़ो, दोनों बात को कोऑर्डिनेट करो। अपने अभिप्राय पुष्ट करने की आदत जो पड़ी है वो तो घास
के
आगम में सब बात है, सबके अभिप्राय की बात होती है, आपके अभिप्राय की होती है और दूसरे के अभिप्राय की नहीं होती है, वो नहीं है। जब हमारे अभिप्राय से विरुद्ध बात आती है उसको पहले सावधानी करना चाहिए, तभी हम कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, वरना तो सभी वही धंधा करते हैं और अपन भी वही करेंगे तो वही बात रह जाएगी।
मेल नहीं मिलता है तब प्रश्न होता है।
हाँ, तो मेल मेल कहाँ मिलाते हैं? मेल मिलाने की चेष्टा ही कहाँ है? एक ही बात पकड़ करके बैठने की चेष्टा हो रही है यहाँ, तो ये बात हो गई तो इससे तो कोई फायदा होने वाला है, नुकसान ही नुकसान होने वाला है। प्रश्न, अनुभव की विधि की गंभीरता और अंतर्मुख परिणाम का रहस्य क्या है, कृपया समझाइए। तब अनुभव की विधि की जो गंभीरता है और अंतर्मुख परिणाम का जो रहस्य है, ये 12 अंग का रहस्य है, मामूली बात नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये सोचना जरूरी है कि किस योग्यता में आने से हमारी पहुँच यहाँ होती है। एक प्रश्न है अंतरात्म वृत्ति का। अंतरात्म वृत्ति माने क्या? कि अंतर्मुख होने की विधि क्या है, उसकी एक परम जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा अपूर्व जिज्ञासा के पूर्वक इसकी खोज अंतर में चलना, और बाहर में सत्संग में इसकी खोज चलना। अब वो खोज किस हालत में होती है कि जिसको दृढ़ मुमुक्षुता प्राप्त हो। दृढ़ मुमुक्षुता माने जिसको पूर्णता का लक्ष्य हो। ये परिभ्रमण की वेदना, या आत्मा रोती है, इसके बाद होता है, अंतःकरण की शुद्धि के बाद होता है। ये विधि का विषय है। जब दृढ़ मुमुक्षुता आती है, या पूर्णता के लक्ष्य से सत्संग में प्राप्त उपदेश जो हमारे लायक हमारी भूमिका का होता है, इस भूमिका का उपदेश को अमलीकरण, उसको अंगीकार करने की हमारी तीव्रता हो, तभी ये अंतरात्म वृत्ति वाला स्थिर जाता है। और ऐसी अंतरात्म वृत्ति इसी भूमिका में जब किसी मुमुक्षु को होती है, तब ज्ञानी के वचन में अंतर्मुख होने की विधि प्रकाशित होती है, वो समझ में आती है, वो ध्यान में आती है। शब्द रूप से तो उतनी सी बात है कि जब ज्ञान ज्ञान का वेदन को आविर्भाव करता है, और ज्ञा का ज्ञान को तिरोभूत करता है, तभी प्रकट रूप से अंतर्मुख होकर के आत्मा का प्रकट अनुभव होता है। ये विधि का विषय रहा समय सार्थक चंद्रा गाथा का। तो बात तो रही विशेष ज्ञान को तिरोभूत करने की और सामान्य ज्ञान को आविर्भूत करने की, क्योंकि ज्ञान वेदन होता है, ज्ञान सामान्य है। तो ये जो प्रयोग है, परिणमन का ये जो प्रयोग है, यह प्रयोग स्वरूप लक्ष्य के बिना हो ही नहीं सकता। जिसको भाव भाषण पूर्वक स्वरूप लक्ष्य में आया हो, ज्ञान में आया हो, वही ज्ञान विशेष को तिरोभूत करके ज्ञान सामान्य में ज्ञान विलन को आविर्भूत करके अंतर्मुख हो सकता है, और यही एकमात्र तीनों काल में विधि है। लेकिन ये विधि मुमुक्षु की भूमिका की चरम सीमा की उत्कृष्ट भूमिका की है। जब तक लक्ष्य पूर्वक ये प्रयास ये प्रयोग नहीं होता है, इसके पहले अगर कोई प्रयोग करना चाहता है, तो ये कतई संभवित नहीं है, हो ही नहीं सकता।
अगर यहाँ तक मुमुक्षु नहीं आया तो पहले भाव भाषण का
जरूरी ही है
वो प्रयास,
क्यों कि ये तो अंतर्मुख होने में तो तीसरा संकित होने वाला है, परमार्थ संकित होने वाला है। तो दूसरा संकित हुए बिना किसी को तीसरा संकित हो जाए, ये कहाँ की बात है। कारण बिना तो कार्य की निष्पत्ति वहां है ही नहीं, ये तो कार्य कारण कार्य का सिद्धांत हो गया, ये बात है। दूसरा प्रश्न, प्रत्यक्ष योग से सत्पुरुष के सर्वविकल्प का अनुसरण करने का भाव रहे, सर्वविकल्प माने क्या। प्रत्यक्ष योग में सत्पुरुष के सर्वविकल्प मैंने जो हमको लागू होता है, ऐसी एक विकल्प उनको नहीं गिन करके आज्ञाकारिता में जाने की बात है कि इसकी कुछ बात को हम पकड़े पर कुछ बात को छोड़ दें, ये तो बात हो गई टुकड़ा करने की। ऐसा कठिन नहीं है, सभी बातों का मेल होता है और सभी बातों करते हैं, कहीं परस्पर विरुद्धता नहीं होती।
उदेक भाव तो विचित्र प्रकार के होते हैं।
हाँ, उदेक भाव विचित्र प्रकार के होते हैं,
करते हैं,
फिर भी हमें इसके काजी नहीं होना। क्या हमको ज्ञानी पुरुष के उदय भाव का काजी हमको नहीं बनना है? हमारी समझ में बात आए ना तब तो ठीक है, हमारी समझ में बात नहीं आए तो हमें जिज्ञासा में रहना है या हमें कोई काजी बन के जजमेंट नहीं लेना है, इतना ख्याल रखना चाहिए, वरना सत्संग हो जाए। विद्यमान सत्पुरुष के प्रति परम विनय अत्यंत भवी भक्ति है, अत्यंत भवी का भक्ति का अभाव, मात्र सामान्य विनय भी योग्य नहीं है, तो किस प्रकार का विनय हो उस प्रकार बताइए। इसमें ऐसा बनता है कि कोई विद्यमान सत्पुरुष मिल जाता है तो एक ऐसी मुमुक्षु की भूमिका बनती है जिसमें वो व्यक्ति रूप में नहीं दिखता है, भगवान के रूप में दिखता है। तो जिसकी जितनी भक्ति भगवान के प्रति आती है इतनी भक्ति सत्पुरुष के प्रति आती है।
क्या भाव में ही आती है, क्रिया में भी प्रवर्तित हो जाती है?
तो हाँ, तो कोई सवाल इसमें क्या नुकसान है? भाव में आए और क्रिया में आ जाए तो उसमें नुकसान क्या है? आप कहेंगे कि इसमें न्याय क्या है? न्याय वो है कि जो भगवान से तिरता है, जिस निमित्तत्व भगवान में है वही निमित्तत्व सत्पुरुष में है, निमित्तत्व में हीना दिखता नहीं है, परिणामों में हीना दिखता है, लेकिन वो बात रही उनके आपस से उपादान है। हमारे बीच में तो जितना निमित्त भगवान की वाणी का बनता है उतना ही निमित्त ग्रंथ मुनिराज के आचार्य की वाणी का बनता है, इतना ही निमित्त सत्पुरुष के ज्ञानी की वाणी का बनता है, और तीनों की वाणी को श्रुत ज्ञान कहने में आता है। इसलिए श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना ही बात कहने का अभिप्राय वो है कि अज्ञानी का ऐसा ही वचन इसमें नवीन तत्व नहीं होता। अब जो डूबता है वो कभी बचाने वाले की शक्ल का तर्क नहीं करता, आई समझ में? मानो कि आप समुद्र के मध्य में डूब रहे हैं, कि संसार समुद्र में हम लोग डूब रहे हैं, चाहे भान हो चाहे भान नहीं हो, लेकिन जो डूब रहे हैं इसका जिसको भान आता है उनको कोई बचाने वाला मिलता है तो क्या खाता है, क्या पीता है, उसके उदय कैसे होते हैं, इसकी इसकी शक्ल कैसी है, रूप है स्वरूप है, हैं क्या दिखता है, वो
है निकाल दे
तुम्हें दिख रहा है। बचाने वाला तो भगवान ही होता है, ऐसा अनुभव हुए बिना रहता वो यथार्थ है। ये तो जीवन मूर्ति में सत्पुरुष को, लेकिन अगर कोई पत्थर बचाता है ना तो लोग संसार में इसको भी भगवान मान करके पूजने लगते हैं। एक घटना घटी थी कि एक बस में सफर कर रहे थे लोग, इनकी बात है नितिन भाई वगैरह ये भी थे, आबू आ रहे थे हमारे शिविर में माउंट आबू, और एक ट्रक से टक्कर ले ली, टक्कर लेने में बच गए था, बीच में एक पत्थर आ गया था। अगर वो पत्थर नहीं आता तो कितने लोग मर जाते वो कह नहीं सकते। क्या हुआ इस वक्त कि इतना धमाका हुआ बस वाले को पैसेंजर को लगा कि मर गए, चलो कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया हमारे बस का, मर गए। एक सेकंड तो मृत्यु की कल्पना हो ही जाती है, जब देखा कि मरे नहीं तो क्या कारण हुआ, इतना बड़ा धमाका तो हुआ, इतनी बड़ी हलचल तो बस में हुई नहीं, नीचे उतर के देखा तो एक इतना बड़ा पत्थर था जिसने बस को और ट्रक को टक्कर लगाने में आपस में भिड़ाने में रोक लिया। लोग ये पत्थर को उठा करके ले लिए कि ये पत्थर नहीं है बदनाम है बदनाम भर जाता ऐसी घटना घटे। तो ये मान किसको होता है कि जिसको अपनी मृत्यु से बचाने वाले का प्रसंग प्रैक्टिकली सामने देखता है तब ऐसे सत्पुरुष को प्रति परम विनय किसको आता है कि जिसको ये अनुभव होता है कि मैं संसार समुद्र के मध्य में डूब रहा हूँ बचने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बचाने वाला मिल ले रहा है और मैं अकेला बचाने की कोई परिस्थिति है ही नहीं क्योंकि कहीं किनारा दिखता नहीं है और इतने चलते कि किसी की ताकत होती नहीं कि मिलो तक कोई चल फिर सके कोई भी कितना भी चलने की कला जानता हो चार छः आठ घंटे में तो कोई भी थक जाता है और डूब जाता है। ऐसी परिस्थिति में कोई हेलीकॉप्टर से रस्सी बांधकर कुर्सी को भेजे कि तुम बैठ जाओ उस कुर्सी में तो ये तर्क नहीं करेगा कि तुम शकल तो दिखाओ कौन आया हम तुमको शकल पहले दिखाएंगे फिर बैठेंगे ऐसा क्यों करेगा
नहीं।
तो बिना देखे समझ लेता है कि आने वाला कोई भगवान है क्या क्या सोचेगा आने वाला कोई भगवान है वरना मैं समुद्र के मध्य में डूब रहा हूं कि पता इनको कैसे चला मैंने तो कहीं मैसेज दिया नहीं नहीं कोई भगवान ही होगा बिना सफल देखे मानता है कि नहीं। यहां तो बहुत सी बातें देखने में आती है फिर भी जीव की योग्यता नहीं है तो सत्पुरुष को भगवान के रूप में देख नहीं सकता तो उसकी भक्ति आते नहीं होती तो फिर भी नहीं सकता नुकसान तो सबको वो तो अपने रास्ते पे जाकर के आगे जाते हैं तो फिर ही नहीं उनको ऐसी एक घटना होती है जिसका वर्णन हमने निर्वाण दर्शन की पगडंडी के पहले प्रकरण में किया है। सत्पुरुष के प्रति श्रद्धा विनय रखते हुए भी असत्पुरुष में उनके वचन में विनय श्रद्धा करने से विपरीत अभिनिवेश की उत्पत्ति होती है असत्पुरुष में कौन लिया जिसको मानुभव नहीं हो वो असत्पुरुष है सत्पुरुष नहीं है
जो आगम के अनुसार बोल रहा
है जो आगम अनुसार प्रवचन कर रहा है सत्पुरुष नहीं है क्या वो भी इसमें आएगा नहीं आएगा आगम के अनुसार समझ होना बोलना सही दिखता हो तो भी यथार्थता होनी चाहिए अगर यथार्थता है तो सत्संग के योग्य है।
तो यथार्थता उसके प्रवचन में या
परिणमन की यथार्थता बिना वचनों की यथार्थता मानी नहीं जाती ऐसी बात है। तो सत्संग करने योग्य कौन है फिर ही बात ले लें आपके प्रश्न जी के एक तो ज्ञानी पुरुष होते हैं और जो ज्ञानी होने के यथार्थ मार्ग में यथार्थ विधि में चल रहे हैं ये यथार्थता ही सम्यक्त्व का प्री स्टेज है और ये मोक्ष की यथार्थ भूमिका होती है तो वो सत्संग के योग्य ऐसे तो उसमें नुकसान नहीं होता। बाकी ए यथार्थ रूप से आगम की कितनी भी बात बोलने वाले होते हैं इससे कोई फायदा नहीं होता इससे कोई लाभ नहीं होता है क्यों दो बात कहाँ से लेनी है कि हमारे आत्मा जो है जो आत्मकल्याण का लक्ष्य पूर्वक कुछ प्रवृत्ति करना चाहती है और हमारी जरूरत है हमारी रुचि है आत्मकल्याण उसको पुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती
यहाँ से परीक्षा हो गई, इसके बिना परीक्षा नहीं है, क्योंकि बुद्धि का पहुंच का विषय नहीं है। कोई कितना भी चतुर हो भ्रांति में रह जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें हमको अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि केवल आत्मकल्याण के सिवा मेरी कोई धार्मिक प्रवृत्ति होनी नहीं चाहिए। क्या केवल आत्मकल्याण है? जब इसी लक्ष्य को लेकर के मुझे सत्संग करना है, कुछ समागम करना है, तो इसी मुद्दे को लेकर के आपकी मति चलेगी और मेल खाएगा तो सत्संग करने योग्य है, मेल नहीं खाएगा तो सत्संग करने योग्य
बात
खत्म है। यहाँ से देखने का द्रव्य, जिन द्रव्य जीव है, द्रव्य जिन द्रव्य जीव है, वह भी भाव पूज्य है, इससे भावी नहीं से पूज्य है। स्पष्ट अनुभव कीजिए, स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये बात तत्वानुशीलन में लिया है और अनुभव प्रकाश में वो बात दीपचंद जी साहब ने लिया है। द्रव्य जिन भी भावी नहीं से पूज्य है, ऐसे बात लिया है। क्यों? एक आगम का वहाँ एक प्रकार मिलता है कि भगवान विमलनाथ स्वामी जो थे, उन्होंने उनको जब पता चला कि मैं तीर्थंकर होने वाला हूँ, यानी मैं तीर्थंकर द्रव्य हूँ, तो उन्होंने अपने अपने आप उत्सव मनाया। ये हमारे पुराण में ये बात आती है, प्राय अपने आप अपना उत्सव मनाने का कोई साहस नहीं करता है। क्यों? कि लोगों की नजर में ये बात पचने वाली नहीं है। लोग तो ऐसे कहेंगे कि देखो उसको अहम भाव हो गया, इसलिए ऐसा बनता नहीं है। लेकिन वहाँ उल्लास में वो आ गए थे तो खुद ने उत्सव मनाया था, और वो बात की है अनुभव प्रकाश में, और उस पर गुरुदेव के प्रवचन भी हुए हैं, और उन्होंने यही बात का समर्थन, दीपचंद जी की बात का समर्थन किया। द्रव्य जिन में जीव द्रव्य, जीव जीव द्रव्य है, वो भावी निश्चित पूज्य है, ऐसे कहते हैं। तो तीन कल्याण तक द्रव्य जीव है, फिर केवल ज्ञान कल्याण चौथा होता है, तब भाव जीव है। वहां वो बात यह है, बोलते तीन कल्याण का द्रव्य जीव है, फिर भी वो पूज्य है, ऐसा करके लिया। सर्व प्राणी के प्रति दासत्व का क्या अभिप्राय है, कृपया स्पष्ट कीजिए। सर्व प्राणियों के प्रति दासत्व का वो अभिप्राय है कि जगत में जितने भी प्राणी हैं वो जाति की अपेक्षा से तो एक ही प्रकार के हैं, और हमें उतना विनम्र रहना है कि किसी भी जीव से हम हमारी उच्चपने की कल्पना नहीं करें। मोक्ष की भूमिका में उच्चपने की कल्पना नहीं करें, मेरे से नीचा है, मैं इनसे नीचा हूँ, मैं आगे हूँ वो पीछे हैं, वो कल्पना स्वयं को नुकसान कर रही है। ये बात श्रीमद जी ने 254 नंबर के पत्र में ली है कि जब किसी सत्पुरुष की पहचान होती है तब उनके प्रति परमेश्वर बुद्धि आए बिना नहीं रह सकती। कैसी बुद्धि आती है?
परमेश्वर बुद्धि,
परमेश्वर बुद्धि आती है, यानी भगवान के रूप में वो दिखने लगता है, क्योंकि उसको वो चिर जाता है। साथ ही इस एक सिम्टम बताया है, ये सर्व के प्रति, सर्व प्राणी के प्रति दासत्व होता है। यानी एक पॉलिसी मेटर का विषय हो गया। ऐसी एक नीति बन जाती है कि किसी को, किसी के प्रति हमें मन से, वचन से, काया से और कृतकारित अनुमोदना से, नौ कोटि से हमें कोई प्रतिकूलता या दुख पहुंचे ऐसे हमारे ओर से होना चाहिए। जब हम पूर्ण सुखी होने चाहते हैं तो हमारे ओर से कोई दुखी हो ये हमारे अभिप्राय में नहीं रहना चाहिए। एक अभिप्राय की शुद्धि इस भूमिका में आती है और इसके विपरीत जो भी अभिप्राय की गड़बड़ी है वो वहां मिटती है।
इसमें दीनता नहीं है, लघुता है। ऐसे अभिप्राय में दीनता नहीं है, लघुता है।
हाँ, लघुता नहीं, विनम्रता है।
विनम्रता है,
बहुत विनम्रता आती है। मतलब वो है, आशय वो है कि बहुत विनम्रता आती है
जीव मात्र के प्रति
और बहुत सरलता के। द्रव्य दृष्टि का विषय समझा, लेकिन हमारी दृष्टि तो उल्टी पड़ी है। उल्टी दृष्टि में जोर देंगे तो जोर उल्टा जाएगा। दृष्टि सुलटी कब होती है? मुमुक्षु की भूमिका में दृष्टि साधन नहीं है। मुमुक्षु की भूमिका में ज्ञान ही एकमात्र साधन है। पंचाध्यायिका उत्तरार्ध में 401 नंबर की गाथा में ये बात कही कि ज्ञानम एकम कारणम साधनादि विधोचित। साधन की विधि की चर्चा की जाए, गहरी चर्चा की जाए, इसको मीमांसा कहते हैं, तो ज्ञान एक ही मात्र साधन है। स्वानुभूति एक हेतुश्च तस्मात् तत्कर्मं पदम। क्या कहते हैं ग्रंथकार कि एक स्वानुभूति का हेतु है इसलिए ज्ञान को हम परमपद कहेंगे। या तो ये जो स्वानुभूति के काल में दृष्टि सलटती है, इसके पहले दृष्टि नहीं सलटती और इसके पहले दृष्टि का जोर हो ही नहीं सकता, और होता तो उल्टा होता है, सुलटा होता ही नहीं। अब क्या होता है कि ओघ संज्ञा में निजात्म स्वरूप की कृत्रिम महिमा जो लाता है उसको राग की प्रधानता बढ़ जाती है। क्या होता है?
राग की प्रधानता।
ओघ संज्ञा में राग की प्रधानता रहती है और अपने कल्पना को और अपने राग को मजबूत कर देता है। और वहां जहां ज्ञान की पहुंच होनी चाहिए ये बात बिल्कुल रह जाती है। इसलिए ज्ञान साधन बना करके भावभाषण तक पहुंचे तभी सही महिमा, यथार्थ महिमा आकर के ज्ञान बल पैदा होता है, वही दृष्टि को सरकाता है।
ओग संज्ञा से क्या हुआ?
ओग संज्ञा मैंने बिना प्रयोग, अनुभव पद्धति बिना, केवल बौद्धिक स्तर से, आगम युक्ति अनुमान और तर्क से समझ लिया और मान लिया कि हमने यथार्थ समझा है, इसी का नाम है उपसंज्ञा।
अभिप्राय विपरीत हो गया।
हाँ,
अभिप्राय विपरीत हो गया।
अभिप्राय में तो विपरीतता पड़ी ही है और हाँ, और अभिप्राय किस भूमिका में कहाँ से सरलता है उसका तो ख्याल ही नहीं होता।
बराबर।
भूमिका कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ये लोग जो रोए इसका मतलब क्या हुआ? सुगानी जी रोए, बेंसरी रोई, इसका मतलब क्या बताया हमने कि उनकी संसार की उपासना का अभिप्राय अनादिका था, वहां बदला, अंतकरण की शुद्धि हुई। ऐसे अंतकरण की शुद्धि हुए बिना और विपरीत अभिप्राय रखते हुए हम कुछ भी प्रवृत्ति करेंगे, हमारे उपासना का अभिप्राय है संसार का तो संसार फलेगा, मोक्ष कहां से फलेगा, बनने वाली चीज ही नहीं है। ये तो बहुत टेक्निकल बात है, ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत टेक्निकल बात है।
मुमुक्षु दशा में तो नहीं होती है ओक संज्ञा से?
मुमुक्षु भूमिका में दशा में ओक संज्ञा भाव भाषण के पहले होती है, और जैसे जैसे भाव भाषण आता जाता है वैसे वैसे ओक संज्ञा की निवृत्ति होती जाती है। परमानंद सार में एक 236 नंबर का गुरुदेव का वचनामृत है कि जैसे जैसे भाव समझ में भाव भाषण आता जाता है वैसे वैसे दर्शन मोह मंद होता जाता है, और जैसे जैसे दर्शन मोह मंद होता जाता है दर्शन मोह का अभाव होने की भूमिका आती है, तब जीव शून्य को प्राप्त करता है।
भाव भाषण में भी ये अंश चलते हैं?
हाँ,
क्रमशः होता है भाव भाषण?
हाँ, ऐसा बनता है, जैसे जैसे प्रयोग चलता है वैसे ही कई बातों का भाव भाषण आना, स्वरूप का भाव भाषण का एक स्टेज फिर आता है। ऐसा होता है। भाव भाषण माने क्या
जी?
कि हमारे अनुभव में जो भाव आते हैं उसका स्वरूप क्या है, उसका फीलिंग होना, भाषण मैंने लगना
जी,
भाषण मैंने लगना, तो बौद्धिक स्तर पे फीलिंग नहीं आती है
जी,
विचार चलता है ऐसा है वैसा है, आत्मा ऐसा है मेरा आत्मा ऐसा है मेरा आत्मा ऐसा है मेरा आत्मा ऐसा है, विचार चलता है, फीलिंग नहीं आती,
अनुभव नहीं
होता, अनुभव नहीं पाता। क्योंकि उसमें अनुभव पद्धति होनी चाहिए, ये पद्धति दूसरी है। इसलिए ये जो आत्मा रोई कि नहीं रोई ये प्रश्न जो हम उठाते हैं, इसमें आपको फीलिंग आई कि नहीं आई वो बात है, ये अनुभव पद्धति का विषय है, और मुमुक्षुता का मार्ग भी अनुभव पद्धति से ही चालू होता है और आगे जा करके स्वानुभव को पकड़ लेता है। विचार पद्धति में तो 11-9 पूर्व तक हम चले गए हैं, इसमें कोई दम नहीं है। 11-9 पूर्व तक पढ़ने वाले को समझ में कोई गलती रहती है वो बात नहीं है, समझ की भूल तो ये सच्ची समझ से निकल जाती है, लेकिन अनुभव की भूल सच्चे अनुभव बिना नहीं निकलती। देह और आत्मा भिन्न है ऐसा क्या हम लोग नहीं जानते क्या?
अनुभव में
अनुभव क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, पीड़ा होती है, वेदना होती है, तो अनुभव होता है, तो मेरे में हुई, मुझे हुई, ये अनुभव होता है। ये उल्टा अनुभव के सामने सुलटा अनुभव करने का हमारा प्रयोग क्या है? इस प्रयोग को अनुभव पद्धति कहते हैं, प्रयोग पद्धति को अनुभव पद्धति कहते हैं। तो शुरू से वो बात है, मनुष्य की भूमिका का स्टार्टिंग वहां से होता है। भोग संगना से ज्ञानी पुरुष की भक्ति और बहुमान करने पर भी वंचना बुद्धि रह जाती है, उसमें सरलता की न्यूनता है या समझने योग्य या समझने योग्य है?
जो समझने योग्य,
हाँ,
समझने योग्य
या समझने से कृपया स्पष्ट कीजिए। मैंने सरलता की कमी है कि न्यूनता है, क्या समझ? ऐसा प्रश्न है ना, ओक संज्ञा में जो वंचना बुद्धि रहती है, मैंने खुद को एक भ्रांति हो जाती है कि मैं भक्ति तो करता हूँ, विरोध तो नहीं करता, लेकिन सत्पुरुष के प्रति परमेश्वर बुद्धि आए बिना ओक संज्ञा में जो भक्ति रहती है, तो मैं भक्ति तो करता हूँ नहीं, विरोध तो नहीं करता हूँ नहीं, ऐसे वंचना बुद्धि हो जाती है, भ्रांति हो जाती है, असफलता का कारण बनती है। हम यहाँ एक प्रश्न और खड़ा होता है, हमारे यहाँ तो बहुत गहराई से बातों की चर्चा चलती है सत्संग में, कि हम तो है भी योग संज्ञा ओग संज्ञा में, पहचान करने की हमारी क्षमता या योग्यता आई नहीं, हम क्या करें? तो ओग संज्ञा में एक जगह है निष्काम भक्ति है। क्या?
निष्काम भक्ति।
केवल आत्मकल्याण के हेतु से जो भक्ति होती है वही निष्काम भक्ति है। वो निष्काम भक्ति वाले को कुछ एक अंश में मति की निर्मलता आकर के पहचान होने की योग्यता प्राप्त होती है, और वो आती है थर्ड स्टेज में, जो पूर्णता का लक्ष्य होता है, इसके बाद आती है। इसके पहले कभी किसी को नहीं आती है, इसलिए ऐसा व्यवस्थित स्टेज वाइज ये बात है। तो वंचना बुद्धि रह जाती है, उसमें ओक संज्ञाई कारण है, न्यूनता ही कारण है। देव शास्त्र गुरु और सत्पुरुष विषयक किसी भी प्रवृत्ति में स्वयं के मान का लक्ष्य न होवे। किस प्रकार मान हो जाता है समझाइए। हाँ, उसमें क्या है कि केवल आत्मकल्याण का लक्ष्य से होता है, तो निंदा प्रशंसा के पर लक्ष्य नहीं जाएगा। एक काम कोई करता है तो इसके प्रति सभी का एक अभिप्राय नहीं होता। कोई प्रशंसक मिलते हैं, कोई विरोध बोलने वाले भी मिलते हैं। संसार में तीर्थंकर भी इतना पुण्य लेके नहीं आए थे, ऋषभदेव भगवान जी। तीर्थंकर प्रकृति का उदय था, समव शरण में विराजमान थे, फिर भी मरीचि कुमार उसके विरोध करते थे, बाद में समव शरण में नहीं करते। तो ये तो बात, कोई ऐसे तीर्थंकर से लेके कोई ज्ञानी महापुरुष ऐसा पैदा ही नहीं हुए कि जिसका विरोध नहीं हुआ। अब जो निंदा प्रशंसा का लक्ष्य से प्रवृत्ति करता है वही मान सूचक है। जिसको केवल आत्मकल्याण के लिए प्रवृत्ति करना है वो कुछ सुनेगा नहीं, तो प्रशंसा को भी नहीं सुनेगा और निंदा को सुनेगा तो यथार्थ रूप से सुनेगा कि अच्छा काम कर रहा है, हमारा उपकार कर रहा है, कि हमारे मेले कपड़े अपने साबुन सोडा और पानी से धो रहे हैं, अपने को तो फायदा ही फायदा है। तो उनको तो कोई निंदा प्रशंसा वाली बात मुख्य होने वाली
नहीं।
ये बात है। तो सरलता यथार्थ रहती है तो मान का प्रकार नहीं आता है। मान तो अवस्था को लेकर के होता है,
पर्याय के लक्ष्य
अवस्था में उच्चपना नीचपना की कल्पना है। हमें वो कल्पना में जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे तो पूर्णता का लक्ष्य है। पूर्णता हुए बिना हम हमारे किस अवस्था का मान करें। बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। ये भावलिंग मुनिराज को आता है तो हम किस किस खेत की मूली। हाँ, ऐसा आ जाना चाहिए कि जो दिन रात अहोरात केवल ज्ञान का पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हाँ, रात्रि को नींद भी नहीं लेते, 24 घंटे एक काम करते हैं ज्ञान ध्यान का, वो भी ऐसा देखता है कि बहुत बाकी है, बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। गंधर्व देव भी भगवान के सामने देखते हैं तो अपने की पावरता नजर आती है। हम किस अवस्था पे अहम भाव करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्पुरुष की आज्ञा का आश्रयवान आज्ञाधीन वर्तता मुमुक्षु ही प्रभावना के लिए अधिकारी है। प्रभावना अंग तो व्यवहार है, निश्चय प्रभावना पूर्वक व्यवहार प्रभावना होती है। मुमुक्षु को निश्चय प्रभाव निश्चय प्रकट नहीं हुआ फिर वो प्रवचन प्रभावना क्या करें, स्वयं अनुभूति का अभ्यास करें। बात तो ऐसी ही होनी चाहिए, फिर भी क्या होता है
कि इस निकृष्ट काल में सत्पुरुष का मिलना अरबों में भी एक मुश्किल है, किसमें करोड़ों में नहीं, अरबों में भी एक मिलना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो सत्पुरुष के आश्रयवान मैंने आज्ञाधीन रूप से प्रवृत्ति करते हैं तो कभी चुप करता है तो बच जाता है, पर चुप होने की वह संभावना है, फिर भी चुप आज्ञाधीन होने से अगर इसकी चुप होती है तो बच जाता है। तो दूसरे मुमुक्षु के लिए इनकी दशा अगर नजर आती है दूसरे मुमुक्षु को कि वो कैसे आगे बढ़े, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उतनी प्रभावना की वहाँ परिस्थिति बनती है, इससे ज्यादा नहीं है। वो कोई प्रवचन करे वो बात तो है ही नहीं, प्रवचन करने का सवाल पैदा होता है।
स्वयं को क्या लाभ है? हाँ? स्वयं को क्या लाभ है?
किसको? मुमुक्षु को। मुमुक्षु को तो अपना जो रस है आत्मकल्याण का रस है उनको सत्संग के दौरान बढ़ाता है, अपने आत्मरुचि को पुष्ट करता है, आत्मकल्याण की रुचि को पुष्ट करता है, उतना लाभ उसको
प्रभावना के माध्यम से।
हाँ, प्रभावना का उसको लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ये है कि मुझे मेरा आत्मकल्याण का भाव बढ़ाना है, मेरे में वो कमी है अभी, तो ये सत्संग के दौरान तो दूसरे सत्संगियों को उपकारी मानता है जिसमें निमित्त पड़ते हैं उसमें, और दूसरा अपनी अपनी योग्यता अनुसार उसमें से जो कुछ लेना है सीखना है वो सीख लेते हैं। इस तरह से यथार्थ सत्संग चलता है तो दोनों को लाभ होता है।
लक्ष्य नहीं होता, बनाओ बनता है तो बन जाता है,
ये बात
अभिप्राय लक्ष्य है।
नहीं, वो कोई प्रचार करने की भूमिका है ही नहीं, संपूर्ण आज्ञाधीनपना होता है तो चुप होने से बचना, चुप होने की संभावना तो है ही, कच्ची भूमिका है।
श्रीमद जी ने लिखा
है और सामाजिक बात वो है कि आप कोई भी सामाजिक काम कार्य करोगे कुछ नहीं कुछ लोग तो प्रशंसक मिलेंगे ही मिलेंगे, हम मान नहीं चढ़ने की परिस्थिति कैसे बनती है बताइए, इस बात को कैसे रोकोगे। हमने एक बात कही थी पूर्णता के लक्ष्य के विषय में कि गुरुदेव ने ये सूत्र दिया है वो कितनी गहराई से दिया है कि जीव तो पर्याय बुद्धि है, कुछ भी करेगा पर्याय का अहम उसको आए बिना रहेगा नहीं, इसके लिए कौन सी दवाई है कौन सा इलाज है वो खुद ही नहीं रोक सकता है। तो बहुत गहराई से ये बात कही कि पदार्थ को देखा नहीं इसकी महिमा आई नहीं दृढ़दृष्टि हुई नहीं, पर पर्याय बुद्धि तो संज्ञक पर निर्विकल्प संज्ञक पर नहीं हो उसके पहले तो हो ही नहीं सकता, द्रव्य बुद्धि आती नहीं, पर पर्याय बुद्धि में पर्याय का अहम का रोकना अनिवार्य हो जाता है। अब करे क्या, ये अनंत काल में जीव नहीं निकला इसका यही कारण है कि उसने जो भी किया उसका अहंभाव आया, जो भी किया उसका अहंभाव, जो भी समझा जो भी सीखा जो भी किया उसका अहंभाव कर लिया है जाने अनजाने,
स्वाभाविक है उसका।
जब यथार्थ रूप से पूर्णता का लक्ष्य होता है जिसको उनको जो भी आगे बढ़ने का होता है बहुत बाकी है बहुत बाकी है बहुत बाकी है वो बात का लक्ष्य रहता है, नजर वहीं रहती है और उसको अहम भाव होने की संभावना नहीं, बहुत गहराई है इसमें। योजनाबद्ध काम है, ज्ञानियों ने ये योजना बनाई है कि तुम कैसे निकल पाओगे, वरना निकलने का कोई चांस नहीं है, ये परिस्थिति बनती है करे क्या। दर्शन मुखी जाल ऐसी बिछाई हुई है कि इधर से निकले तो इधर पछताए, इधर से निकले तो इधर पछताए, ये बात हो जाती है। इसलिए बहुत व्यवस्थित बात किया है कि उनकी अनंत करुणा है हम लोगों से।
बहुत बाकी है बहुत बाकी है ऐसा विकल्प में आने पर लघुता प्रतीत नहीं होती?
नहीं, इसमें विकल्प में नहीं आना है, ऐसा समझ में आता है
कि पूर्ण शुद्धि का हमारा ध्येय है, लक्ष्य माने क्या है, हमारा ध्येय हमारा गोल है, हम वहां जाना पहुंचना चाहते हैं, और जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक हमको भान रहता है कि कितना बाकी है, कि बहुत बाकी है, वो भान रहता है, दुनिया को भान रहता है। तो बैंकी के वचनामृत में वो बात आई है कि मुराद भी कहते हैं कि हमको बहुत बाकी है। तो केवल ज्ञान में 13वें गुण स्थान के पहले 12वें गुण स्थान में ज्ञान कितना, अनंत महाभाग, कितना
अनंत
महाभाग, चाहे 12 अंग का ज्ञान हो तो भी अनंत महाभाग में है गंधर्व देव को।
हाँ जी,
कितना
अनंत महाभाग।
केवल ज्ञान से प्रकाशित हुई दिव्य ध्वनि में अनंत महाभाग बाहर आता है, प्रकाशित होता है केवल ज्ञान का, और ये दिव्य ध्वनि सुन करके गंधर्व देव 12 अंग की रचना करते हैं, वो दिव्य ध्वनि से अनंत महाभाग में 12 अंग है।
हाँ जी,
अगर किसी को 12 अंग का ज्ञान है तो भी अनंत महाभाग में है।
हाँ जी,
उसका भान रहना, बस अहम भाव होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।
बराबर,
एक श्रीमद जी ने बहुत अच्छा पत्र लिखा है 837 नंबर का, जो प्रभावना का यह विषय चलता है,
33
तो और स्पष्टीकरण कर दें,
837
बहुभाग क्या होता है कि जो प्रवचन करते हैं या सत्संग करते हैं, वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, लिखने वाले होते हैं, जाने अनजाने में उपदेशक के स्थान में बैठ जाते हैं और टोन भी उपदेशक का हो ही जाता है। ज्ञानी ऐसा कहता है कि मैं उपदेशक नहीं, मैं उपदेशक हूं, तो आपस में बैठ करके सत्संग करने वाले हैं, मैं उपदेशक नहीं, क्यों, सर्वोत्कृष्ट उपदेशक तो तीर्थंकर परम देव सर्वज्ञ परमात्मा ही होते हैं। ये उत्कृष्ट के उत्कृष्ट उपदेशक हैं। दूसरे नंबर के अगर कोई उपदेशक होते हैं तो भाव लिंगी मणिराज होते हैं, निग्रंथ अंतर्वाय, जिसकी स्थिति द्रव क्षेत्र काल भाव से अप्रतिबद्ध है, वो उपदेश के लायक है, उसे गुरु का पद है।
हाँ जी,
बस उपदेशक की मर्यादा वहां खत्म हो जाती है, इसके नीचे वालों के उपदेशक की मर्यादा नहीं है। कौन लिखते हैं, ज्ञानी होकर के वो बात लिखते हैं, और एक पत्र में लिखा है 466 नंबर के पत्र में कि हम कोई उपदेशक बन के बात नहीं करते, जिज्ञासा होते हैं, पूछते हैं, उसको अंगुली निर्देश करते हैं कि मार्ग ऐसा है जो हमारे अनुभव में आया है, हमने हमारा घर देखा है, घर जाने का रास्ता देखा है, आप पूछते हैं तो बताते हैं, बाकी हम जो उपदेश बनके आप वैसा करो, वैसा मत करो, वैसा करो, वो बार हमारी है ही, कभी ऐसा कि बोल देने तो भी हमारे अभिप्राय में उपदेशक की बात है। जब ज्ञानी इस स्थान में विचार करते हैं तो फिर मनुष्य के लिए क्या सोचना चाहिए, हाँ, तो उनको तो उपदेशक होने का सवाल
नहीं,
मैं नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में रागादि की हीनता से ज्ञानादि की विशेषता से जीव महान होता है, चौथा गुणस्थान वाले को संयम नहीं है, रागादि बहुत है, उसकी क्या अष्टद्रव्य से पूजन कर सकते हैं कि उसकी पूजन का कोई और अभिप्राय है, हमारे यहाँ तो आर्य का माता का 5वां गुणस्थान होता है,
उनका भी कहीं पूजन नहीं आई, इनका कहीं पूजन नहीं आई, नहीं अर्घ चढ़ाना आया। सैद्धांतिक तौर से ये बात है। हम पर्व के दिनों में रत्नत्रय की पूजा में सम्यक दर्शन की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? कहते हैं नहीं करते। अब इस सम्यक दृष्टि के बिना सम्यक दर्शन कहीं और जगह पाया जाता है क्या? हाँ, तो इस सम्यक दर्शन की पूजा में सम्यक दृष्टि की पूजा आई कि नहीं आई? हैं, आई आई कि नहीं आई? अच्छा, आगम का आधार लेते हैं। तीर्थंकर देव का जन्म होता है। बाल तीर्थंकर कौन से स्थान में है? चतुर्थ है ना, ठीक है। अब सौधर्म इंद्र भी ज्ञानी है,
सम्यक दृष्टि हो,
सम्यक दृष्टि आता है स्वर्ग में से, अपने लाभ लश्कर लेकर के आता है, लाखों देवों को लेकर के आता है। क्या करता है, क्या करता है बताइए? उसको मेरु पर्वत पर ले जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ? अभिषेक करते हैं। अभिषेक क्या चीज है? पूजा है। पूजा के अंग कितने? अभिषेक, वंदना, स्तुति, प्रणाम, अष्टद्रव्य से अर्घ चढ़ाना, ये सब पूजा के अंग। वहाँ पूजा करते कि नहीं करते?
तो
पंच कल्याणक में करते कि नहीं करते?
तीर्थंकर होने वाले हैं,
मतलब चतुर्थ स्थान है ना, वहाँ पर प्रत्यक्ष पर चतुर्थ स्थान है। लेशन संयम परसुर नाथ जजय है, अतः छेड़ा है। जजय माने क्या? कि तीर्थंकर देव को भी लेश भी संयम नहीं है, तो भी सुरनाथ मैंने सौधर्म इंद्र इसकी पूजा करता है।
कहते हैं कि प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं,
नहीं पूजन भी करता है। प्रशंसा क्या, पूजन भी करता है। और हम भी पंच कल्याण में अष्ट द्रव्य से करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये बात तो खुली है, ये कोई छिपी हुई बात तो है ही नहीं, बात तो खुली है। और सैद्धांतिक रूप से देखें तो धर्म पूज्य है, सम्यक दर्शन पूज्य है कि नहीं है? जब धर्म पूज्य है तो धर्म का धनी अपूज्य है, वो बात न्याय सम्पन्न है क्या? न्याय है इसमें कोई? तो न्याय सम्पन्न बात है ही नहीं। तो बात हो रही, हमें तो वाद विवाद में इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए। हमें क्या फायदा और क्या नुकसान वो देखना है, हम नुकसान, हमें क्या फायदा और क्या नुकसान, इतना ही देखना बस बात खत्म हो गई। अगर सजीवन मूर्ति की महिमा परमेश्वर बुद्धि उसमें क्या कसर रही, करने से दर्शन का अनुभव यथार्थ प्रकार से टूटता है और सम्यक की समीपता होती है, तो इसमें नुकसान क्या है, क्या नुकसान है?
तब तो परमेश्वर बुद्धि उत्पन्न होगी उनमें, लेकिन उससे पहले की अवस्था में तो नहीं उत्पन्न होती ना?
नहीं होती, क्योंकि उसमें तो दिखाई नहीं उसके परमेश्वर के रूप में, तो कहाँ से होगी? तो उस वक्त जो लोग संज्ञा में है उसको निष्कामता होनी जरूरी है
जी।
सकामता से मलिनता आती है, निष्कामता से पवित्रता आती है, ये सिद्धांत है। इसलिए निष्काम बुद्धि से भोग करना वाला यदि भक्ति करता है तो आगे जाकर के उसको पहचान होने की मति की निर्मलता आती है और वो यथार्थ भक्ति में बाद में आ ही जाता है, ये इसका पूर्व भूमिका है, इसके सिवा कोई चांस नहीं।
चित्रपट पर नमस्कार पूजन वंदना
जी,
चित्रपट पर नमस्कार पूजा वंदना,
हाँ कोई बात नहीं। पूजा तो चित्रपट के आगे हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन नमस्कार तो मैं नहीं करता, कोई दोष नहीं है। पूजा तो वैसे भगवान का भी छवि की पूजा नहीं करते, इसमें एक कारण ये है कि कहीं लोग जिन मंदिर जाना बंद कर देंगे, चलो घर में फोटो रख लिया, कर लियो पूजन, ये बात हो जाएगी। तो उसमें कई प्रकार की विकृति नहीं आए, इसलिए सामाजिक रूप से कुछ बात ध्यान में लेने पड़ती है।
लेकिन जैसे कैलेंडर में
प्रतिष्ठित पूजन,
हाँ कैलेंडर में तीर्थंकर परमात्मा का फोटो छपा हुआ है, महावीर भगवान का, तो उसको नमन करना या नहीं करना? पूर्व ज्ञानियों ने ऐसा हमें बताया, उपदेश हमने सुना, वो कहते कि ये चित्र आदि को नमस्कार नहीं करना चाहिए जब तक पंच कल्याणक होकर के
ना हो। भगवान के विषय में है, नमस्कार तो करना में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जो पूजन के विधि का है, विधि पूर्वक जो पूजन करने की बात है, वो भगवान के मंदिर में जाकर के ही करना अच्छा है, क्योंकि तो उसमें सामाजिक विकृतियाँ नहीं होगी, वरना सामाजिक विकृतियाँ होने का बहुत सवाल है। बाकी बात रही ये व्यवहार की, व्यवहार में द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विवेक किया जाता है। लेकिन जहाँ स्वरूप चिंतन हो,
हाँ जी,
वो तो इस उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात होगी नहीं स्वभाव के
बराबर,
कि जहाँ स्वरूप चिंतन हो उसमें कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पाबंदी नहीं होती। तो बात को देखना है कि हमको कोई व्यवहारिक तौर से कोई विधि विधान में जाना है तो शास्त्रोक्त रूप से चलना है, शास्त्र आज्ञा में चलना, अपनी आत्मा में जाना है तो इसके लिए तो आपको कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की पाबंदी नहीं होगी।
क्या आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि उस पत्रिका पर छपे हुए फोटो को अगर प्रयोजन भूत है तो नमन करें और प्रयोजन नहीं तो साधारण रूप से नमन ना करें?
हाँ, भाव में आकर के कुछ नहीं करें। हाँ,
बिना भाव में आए अगर प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा या आत्मा की ओर लक्ष्य नहीं है वो मात्र स्वभाव।
ये गुरुदेव की फोटो है
जी, हाँ जी,
हमको भगवान दिखता है, हमको सकल से कोई मतलब नहीं, हमारे लिए तो भगवान ही है, बात खत्म हो गई। तो हमको तो भगवान के रूप में देखने से नमन करने का भाव आएगा, शक्ल देखने से थोड़ा आता है, ये बात होती है। ये जिसके निमित्त से हमको तिरने का होता है
उसमें कोई दोष तो नहीं लगता।